ओम शांति। सबसे पहले हम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी कमलेश दीदी का इस तपस्या भट्टी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, साकार बाबा की गोद ली हुई है, साकार बाबा से भी मिले हैं और पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप ईश्वरीय सेवाओं में रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहे, सुबह मुरली क्लास और शाम को सेवा। और पढ़ाई के पश्चात भी, क्योंकि लौकिक घर में थोड़ा सा निकलने में बंधन था, तो सुधा बहन सेवा में लगी और बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी जी ने कमलेश बहन को कहा कि आप थोड़ा दिन लौकिक जॉब करो। तो आपने 5 वर्ष तक बंधन छुड़ाने के लिए लौकिक जॉब भी किया और लौकिक जॉब करते करते भी सेवाओं में सदा लगे रहे। 1982 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वर्तमान समय सांता क्रूज सब जोन में मीराबेन के साथ साथ हर प्रकार की सेवाएं, सर्व सेंटर्स की सेवाएं देते रहते हैं, लेकिन विशेषकर आप सांता क्रूज ईस्ट में सेंटर की डायरेक्टर हैं, सांता क्रूज ईस्ट सेंटर की, जो अपनी सैट विंग है, शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग है, उसकी आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। यूथ विंग में आप बॉम्बे रीजन की कोऑर्डिनेटर हैं और यूथ विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। बहुत एक्टिव हैं देश विदेश में। मैं समझती हूँ ऑस्ट्रेलिया छोड़कर के सारे ही जितने भी अपने कॉन्टिनेंट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट्स में अनेक देशों में आपका सेवा अर्थ जाना रहता है। मधुबन में चाहे इंडिया में, मैं तो यही कहती हूँ एक पांव तो बाहर ही रहता है सदा। तो मैं सदा यही बोलती हूँ कि एक पांव सदा सेवाओं के लिए बाहर रहता है। तो हमारी बाबा की समर्पित बहने जो अपना तन मन धन हड्डियां लगा करके बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रही हैं, उनमें से एक हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी भी हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं और आज जिस विषय पर, अभी भी वो वैसे सैट विंग में व्यस्त थे, लेकिन मैंने कहा कि आप यहाँ हो तो आप भट्टी वालों से भी जरूर आकर के मिलो। तो आज का जो उनका विषय है, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे की जाए, तो आप इस विषय पर स्पष्ट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी,
धन्यवाद राधाबेन। ओम शांति। योग तपस्या की ये भट्टियां जो मधुबन पांडव भवन में आयोजित की जा रही हैं कुछ वर्षों से, और जब हम यहां पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि साकार बाबा की ये चरित्र भूमि सो कर्म भूमि है, तो वास्तव में इस पांडव भवन का कण कण जो है वो हमें साकार बाबा की याद के साथ साथ हमें बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव बड़े स्वाभाविक रूप से ही कराता है। और यहां पर वो अनुभव करना हमारे लिए बहुत आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा उस पर अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि संगम युग जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। बाबा ने तो बहुत पहले से ही बता दिया था कि बच्चे महाविनाश होगा, दुनिया परिवर्तित होगी, लेकिन अब उस महाविनाश का तो हम इंतजार नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या? वो तो आना ही है। जैसे आप देखिए, जब पेड़ पर फल पक जाता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। तो वो समय भी जब आएगा वो तो आना ही है, हम कोई उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है संगम युग पर वो किस बात का होना चाहिए या है, वो है अपनी स्थिति को बनाने का। वैसे भी अगर आप यज्ञ के 80 साल देखें, उन 80 सालों में पहले 14 वर्ष तो रहे घोर तपस्या के, जिसमें हमारी फाउंडेशन जो पिलर्स थे, फाउंडिंग पिलर्स, वो तैयार हो गए, जिनको आज हम दादियां कहते हैं, और वो अभी तो गिनी चुनी रह गई हैं। उसके बाद बहुत समय जो था सेवा और तपस्या दोनों साथ साथ चला कुछ समय तक, और उस समय क्या था, स्थिति का भी ध्यान रखते थे और सेवा का भी ध्यान रखते थे। लेकिन तीसरा फेज ऐसा आया जब सेवाओं की बहुत एक्सपेंशन हो गई, सेवाओं की बहुत वृद्धि हुई, और जहां तक मैं समझती हूं ये जो समय आया लगभग 80s के बाद, और विशेष रूप से जब 85 में पदयात्राएं हुई चारों तरफ, उसके बाद सेवाओं की बड़ी जबरदस्त वृद्धि हुई, और अभी सेवा सेवा और सेवा, ऐसा ही है ना। और हम क्या देखते हैं कि सेवाओं की वृद्धि करना, बात तो सही है, बाबा भी कहते हैं, इवन लेटेस्ट मुरलीज में भी बाबा ने अगर स्थितियों की ओर ध्यान खिंचवाया है तो बाबा ने सेवाओं की वृद्धि की ओर भी ध्यान खिंचवाया है। लेकिन अब जो समय आ रहा है या आ गया है वो है स्थिति से सेवा करने का। जैसे शुरू शुरू में जब दादियां सेवाओं पर निकली, जैसे हम यज्ञ इतिहास सुनते हैं कि जब दादियां यहां से निकली, बैगरी पार्ट तो शुरू हो चुका था ऑलरेडी, कुछ था ही नहीं, यहां से निकल गए, बाबा ने भेज दिया दादियों को दिल्ली में यमुना किनारे पे चले गए। अब वो इस यज्ञ में तपस्या कर करके इतने पक्के हो चुके थे कि जब वो वहां पर गए, एक तो उनका ड्रेस तो व्हाइट था ही था, लेकिन ये जो आज हम बहने साड़ी पहनती हैं उस प्रकार का ड्रेस नहीं था, दूसरा ड्रेस जो था वो था बाल खुले, उम्र छोटी, यमुना किनारे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आप सोचिए उनकी उसी तपस्या ने क्या किया, लोगों को आकर्षित किया, क्यों, स्थिति ऐसी थी। आपने सुना है ये बात, वहीं से ही सबसे पहले निमंत्रण मिला, वहीं यमुना किनारे, वो जो वहां पर अगर आप लाल किला देखेंगे, लाल किला के सामने एक मंदिर है, वहां अभी भी वो मंदिर है, तो वहां पर सबसे पहले निमंत्रण मिला और वहां पर पहला पहला भाषण किया, और वहां से एक एक के बाद दो, ये बहुत लंबा इतिहास है, मैं वो बात नहीं सुना रही हूं, उसमें तो बहुत किस्से हैं। मनोहर दादी कभी वो किस्से सुना सुना कर बड़ा हंसाया करती थी। तो मेरा भाव कहने क्या क्या है कि जब शुरू में जो सेवा हुई वो कैसे हुई, कैसे सेवा हुई, स्थिति से। जो आता था वो उनकी स्थिति पर प्रभावित था। और आप समझते हैं कि ज्ञान का जो आज स्वरूप है, जिस विस्तृत रूप से हम आज क्लासेस कराते हैं, नयों को ज्ञान सुनाते हैं, हम अपने प्रवचन आदि करते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज में जो हमारे लेक्चर्स चलते हैं, वो तो कोई स्वरूप था ही नहीं। दादियां तो बिल्कुल सीधा सीधा ज्ञान सुनाती थी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग भी, जो बुद्धिजीवी लोग भी प्रभावित हुए उस समय, वो उनकी स्थिति से प्रभावित हुए, स्थिति से प्रभावित हुए, बाबा को देखकर प्रभावित हुए। ऐसा नहीं है, उस समय बहुत बुद्धिजीवी लोग आए। हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश भाई जी, एक डॉक्टर एलएस माथुर हुआ करते थे दिल्ली में, वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। उनकी एक बुक भी है राजयोग, उसका जो अर्थ है उसमें क्या है कि राजयोग एक वैज्ञानिक के, उस वैज्ञानिक ने राजयोग को कैसे देखा है, वो एक उनकी किताब बनी हुई है। एग्जैक्ट टाइटल मुझे स्मृति में नहीं आ रहा है। तो बहुत बुद्धिजीवी लोग भी निकले, अच्छे अच्छे वकील निकले, सीएस निकले, बहुत थे। लेकिन प्रभावित किससे हुए थे, वो हमारी आदरणीय दादियों की स्थिति से। और वही समय अभी लौट कर आया है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, बच्चे जो आदि में हुआ वो अंत में होना है। तो अभी हम किस चीज से सेवा करेंगे, किस चीज से सेवा करेंगे, अभी हमको अपनी स्थितियों से सेवा करने की आवश्यकता है। वो बात ठीक है, हम धन से सहयोगी बनते हैं, तन से सहयोगी बनते हैं, हम कर्मणा से सहयोगी बनते हैं, हम अनेक प्रकार से सहयोगी बनते हैं। ये सहयोगी बनना फिर भी आसान है, लेकिन अपनी स्थितियों से सहयोगी बनना, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। और मेरी स्थिति कैसे बनेगी, स्थिति कैसे बनेगी, कैसे बनेगी स्थिति, कैसे बनेगी बोलो, अभ्यास से। किस चीज का अभ्यास, योग का अभ्यास। अब योग का अभ्यास भी हम करते हैं, मुरली भी हम पढ़ते हैं, मुरली हम पढ़ें, योग का अभ्यास करें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अभी नीचे शांतिवन में भट्टी चल रही थी, 2 से 5 साल वाली टीचर्स बहनों की भी थी, युगलों की भी भट्टी थी। तो उस भट्टी में किसी ने एक प्रश्न पूछा कि अब हम योग तो लगाते हैं, अमृत वेले भी उठते हैं, मुरली भी रोज पढ़ते हैं, अच्छा फिर भी हम क्या देखते हैं, अब ज्ञान में चलते हुए हमें 3 साल 5 साल, ये कईयों का प्रश्न था कि किसी को 3 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। ये उनका सवाल ये था, फिर भी क्यों वो जो पुराने संस्कार हैं वो बार बार क्यों उभर के आ जाते हैं। अब इतने साल हो गए, मैं मुरली भी पढ़ती हूँ, मैं रोज अमृत वेले भी उठती हूँ, क्यों आ जाते हैं, कारण क्या है, मैं वो सब कर रही हूँ ना, इसका मतलब क्या है, मेरी स्थिति जो है इतनी पावरफुल नहीं बनी है अभी तक, जो मैं अपने पुराने संस्कारों को विनाश कर सकूं। तो ये कारण क्या होता है, एक तो ये बात है, दूसरी बात देखिए, 3 चीजें होती हैं। एक होता है जैसे कोई चीज को दबा देना, मान लीजिए जैसे ये टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है, इसके यहाँ पर बहुत सारा सामान रख दो, चद्दर के ऊपर चद्दर, चद्दर के ऊपर चद्दर, वो डालते जाओ डालते जाओ, इतना ढेर इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो नीचे का जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है वो छिप जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। हमने क्या किया, सप्रेशन, यानी उसको कहीं छिपा दिया, दबा दिया उसको मैंने। अच्छा दूसरा क्या होता है, अब मान लीजिए यही टेबल क्लॉथ है, मैं क्या करूं, इसको उठा के कहीं किनारे पे, किसी अलमारी में, कहीं किसी और कॉर्नर में उसको उठा के रख दूं, मैं एक किनारे पे मैंने रख दिया, ठीक है। और तीसरा क्या होता है कि कोई चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, ये तीन चीजें हैं। ऐसे ही योग में भी क्या है कि हम योग तो लगाते हैं, अब योग तो मैंने लगाया, कभी कभी क्या होता है हमारा योग का जो स्वरूप है वो उस प्रकार का है कि हमें लगता है कि हमारे पुराने संस्कार जो है वो खत्म हो गए हैं, लेकिन वो खत्म हुए नहीं होते हैं, वो जैसे कि कुछ समय के लिए मर्ज हो जाते हैं लेटेंट फॉर्म में, यानी जैसे कि वो नीचे चले गए, दब गए, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, हम सेवा में बड़े बिजी हैं, दीदी हमें बड़ा प्यार करती है, बड़े हमें बहुत आगे करते हैं, सेवा करते रहते हैं, कोई हमारे पास ऐसा बहुत बड़ा विघ्न आता नहीं है, छोटा मोटा आता है वो चलता रहता है, तो सब बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। अचानक कोई ऐसी बात आ गई तो वो देखो कैसे संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि अब तक तो हमने क्या कर रखा था, उसको दबा के रखा था। इसीलिए आप देखिए कई बार ऐसा होता है, कई भाई बहन 10-10 साल के बाद भी थोड़ा सा ज्ञान से दूर चले जाते हैं। क्यों दूर चले गए, कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने योग लगाकर अपने पुराने संस्कारों को खत्म नहीं किया। ज्ञान भी जरूरी है, अमृत वेले उठना भी जरूरी है, लेकिन मेरी योग जो है वो ऐसी योग मेरा पावरफुल हो जो अग्नि में परिवर्तित हो जाए और मेरे संस्कार जो है वो दग्ध हो जाए। आप सोचो वो ऐसा योग मेरा लगेगा कैसे? कोई भी चीज के लिए देखिए, हर चीज जो है ना ग्रेजुअल होती है, ऐसे एकदम से नहीं आ जाती है। अब ऐसे ही यहां भी अगर मुझे बाबा से योग लगाना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, और हम कर्म तो छोड़ नहीं सकते, हम सारे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, राइट? हम सारे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, कोई आप में कुमार भी होंगे, कुमारियां भी होंगी, कोई जॉब्स वाले होंगे, कोई अपना बिजनेस करने वाले होंगे। अब हमको वो कर्म तो करना ही है, बाबा ने तो ऐसा कहा नहीं है कि बच्चे अपना कर्म छोड़ के मेरे साथ बैठ के योग लगाओ, ये तो बाबा ने कहा ही नहीं है। बाबा ने क्या कहा है, कर्म करते हुए मुझे याद करो। तो वो कर्म भी मैं करती रहूं, अच्छा फिर ना केवल मुझे कर्म करना है, ऐसा नहीं कि मैं सबसे किनारा छोड़ के बैठ के अपने कर्म पे ही मैं फोकस हूं, अपना करती जा रही हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में तो हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, सेवा के बदले डिसर्विस हो जाएगी। हमें कंसर्न है वो भी है, लेकिन अब हमें क्या करना है, करना के अब वो कंसर्न भी है, लोगों के साथ रहना भी है, वो संबंध भी निभाना है, वो संबंध निभाना है ना हमें। बाबा ये क्या क्या कहते हैं, बच्चे निभाओ, तोड़ निभाओ, बाबा का ये शब्द है ना, तोड़ निभाओ, तो वो भी मुझे निभाना तो है ही। अब उसमें निभाते हुए मैं बाबा की याद या मेरी स्थिति को इतनी पावरफुल बनाऊं, तो उसके लिए वो सहज युक्ति कौन सी है? देखिए एक वो है, जैसे आजकल आप भट्टी में आए हुए हैं, जब मैं यहां पर आई तो मैंने देखा आप सारे बैठे थे एकदम जैसे एकाग्र होके, और बड़ा पावरफुल जैसे वाइब्रेशंस थे, एक ये है। लेकिन ये हर समय हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, संभव नहीं है। मुश्किल से हमको टाइम मिल पाता है और हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मेरी स्थिति का एक हिस्सा बन जाए, रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो ठीक है। लेकिन वो मेरा कब बनेगा, जब मुझे चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कर्म करते मुझे बाबा याद रहे। अब सारा टाइम मैं बैठ के बाबा 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 तो नहीं करती रहूंगी, वो तो बुजुर्गों की तरह से जैसे कोई गीत गा लिया रटन कर लिया, वो तो गीत गाने के जैसे हो जाएगा। तो मुझे कर्म भी करना है, संबंध भी निभाना है, अपना धंधा भी करना है, सब कुछ करना है। इसलिए बाबा ने हमें क्या युक्ति बताई कि बच्चे तुम मेरे साथ सर्व संबंध निभाओ। अब गीता में क्या लिखा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सब संबंधों से मुझे अपनी बुद्धि को पहले हटाना होगा और फिर परमात्मा में लगाना होगा। लेकिन फिर भी बुद्धि ना चाहते हुए भी संबंध में जाती है ना, कितना भी करो जाती है कि नहीं जाती है, संबंध में बुद्धि जाती है। तो कैसे, जितना बाबा से जुड़ेगी, देखिए कुछ क्या करते हैं, तोड़ के याद करते हैं और कुछ जोड़कर याद करते हैं, दोनों में फर्क है। हमें क्या करना है, बेटर वे कौन सा है? देखिए एक मैं आपके सामने उदाहरण रखती हूँ, मेरे पास एक तराजू है, है? तराजू होता है ना, वो तराजू क्या होता है, अब इस ये जो हिस्सा पलड़ा है उसका, एक पैन जो है उसका, उसमें मैंने यहाँ पर 1 किलो सामान रखा है, तो क्या हुआ, अब ये जब मैंने यहाँ सामान रखा तो ये क्या हुआ, ये बोला नीचे चला गया, है ना। और अगर मैं इसके अंदर जितना इसमें मैंने रखा है उससे ज्यादा मैं इसमें रख दूं तो क्या होगा, ये क्या होगा, मैं ज्यादा रखती जाऊं तो ये नीचे आता जाएगा और ये ऐसे ऊपर आता जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ती जाऊं, एक एक संबंध बाबा के साथ जोड़ूं, तो बड़े स्वाभाविक रूप से जिन संबंधों में हमारी मोह की रग अटकी हुई है, जो मुझे बार बार खींचते हैं, वो संबंधों से हम ऑटोमेटिकली डिटैच होते जाएंगे। हमको डिटैच होना है, हमको उस प्रकार से जैसे दुनिया में कहते हैं वो तोड़ना नहीं है। अब आप देखिए बाबा ने ये भी क्या बनाया, ये भी परिवार है ना सारा, और ये कौन सा परिवार है, ईश्वरीय परिवार, और इस ईश्वरीय परिवार में भी हमारा एक दूसरे के साथ क्या है, ईश्वरीय स्नेह, और संबंध कौन सा, रूहानियत का संबंध, ये हमारा संबंध है। लेकिन क्यों बाबा ने उन संबंधों से अपनी बुद्धि को डिटैच करने के लिए कहा, क्योंकि वो संबंध हमें दुख देने वाले हैं, वो संबंध हमें कहां ले जाते हैं, वो हमें ऊपर नहीं ले जाते, वो हमें नीचे की ओर लेकर आते हैं। उन संबंधों में अभी किसी भी प्रकार का रस नहीं रहा, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सृष्टि कारण है, उन्हें मुझे क्या करना है, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं। और वो सर्व संबंध कैसे जुड़ेंगे, मेरे बुद्धि से जुड़ेंगे। और कहते हैं संबंध सबसे बड़ी दौलत है, दुनिया में ऐसे बोलते हैं कि 4 चीजें जो है वो सुख देने वाली होती हैं, जैसे सत्ता होती है, साधन है, संपत्ति है, और चौथा है संबंध। संबंध भी सुख देने वाले हैं, लेकिन आज के संबंध कैसे हैं, वो सुख देने वाले नहीं। और बाबा के साथ जो मेरे संबंध जुटेंगे वो कैसे होंगे, वो मुझे सुख देने वाले हैं। तो मुझे एक एक संबंध बाबा के साथ जोड़ना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा के साथ हमारे कितने संबंध हैं, कितने संबंध है बाबा के साथ, कौन कौन सा संबंध है, बोलो, बहुत देर से मैं ही बोल रही हूँ ना, अब एक एक बोलो, सारे बोलेंगे तो मजा ही नहीं आएगा सुनने में, हाँ एक एक बोलो। अच्छा एक एक माताएं बोले, एक भाई बोले, फिर एक माता एक भाई, ऐसे करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अच्छा पहले माताएं बोलो, हाँ कौन सा, अच्छा पिता का संबंध, एक ही संबंध बोलो सारे नहीं, अच्छा अभी अभी भाई लोग बोलेंगे, कौन सा, माता का, अच्छा ठीक है, टीचर, बहुत अच्छी बात है, पिता का और माता का संबंध, सो ब्यूटीफुल ना, ठीक है, टीचर का संबंध, अच्छा अभी भाई लोग बोलो, सदगुरु का संबंध, अच्छा साजन का संबंध, अच्छा और कौन सा संबंध है, हा? सजनी का, बाबा सजनी बनता है क्या, हाँ बाबा सजनी बनता है क्या, हमारी प्रकाशमणि दादी जी क्या करती थी, नहीं बिल्कुल गड़बड़ करते हैं भाई, हाँ पांडव बाबा सजनी नहीं बनता, बाबा हमेशा ही साजन है, वो हमेशा ही माशूक है, हम तो आशिक है। मैं आपको कहानी सुनाऊं एक इंटरेस्टिंग, बाबा वैसे सजनी कभी है ही नहीं, बाबा है साजन ही, ठीक है ना। मैंने अभी अभी आपको डॉक्टर एलएस माथुर की बात सुनाई ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ उनका, बड़ी पुरानी बात है ये, मैंने आपको बताया वो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टर थे, तो उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पोस्टिंग हुई विदेश में, और जब उनकी विदेश में पोस्टिंग हुई तो वो एक ऐसा एरिया था, वो एक ऐसा रीजन था जो बहुत कोल्ड रीजन था, और उस कोल्ड रीजन में क्या होता है, बहुत वेजिटेबल सब्जियां आदि ज्यादा होती नहीं है, और जनरली वहां के लोग जो है दूसरे प्रकार का भोजन खाते हैं। साकार बाबा का समय था वो, तो जब उनकी पोस्टिंग हुई, उनको 2 साल के लिए पोस्टिंग हुई थी, वो छुट्टी लेके यहां से गए, और बाबा ने उनको पहले से ही कह दिया था कि अपने साथ थोड़ा बहुत कुछ लेकर जाना, जैसे जैसे आलू होते ना बहुत समय तक खराब नहीं होते हैं, जब तक ढूंढेंगे भी सामान कहाँ मिलता है कैसे मिलता है, और उनको जाना था उनकी जो लौकिक युगल थी विजयाबेन, उनका अभी तक जो फॉर्मेलिटीज होती हैं बाहर जाने के लिए वो पूरी नहीं हुई थी, वो थोड़े दिन के बाद वहां पहुंचने वाली थी, तब तक तो उनको ही करना था जो कुछ करना था। तो वो ले गए, तो एक बार वो अपना अनुभव सुना रहे थे, यही सारा मैंने उनके मुख से ये अनुभव सुना हुआ है, तो कहने लगा कि जब थोड़ा बहुत जो कुछ ले गया था वो तो ठीक हो खत्म हो गया, जब एक दिन क्या हुआ, अब मुझे कुछ करना था, करना तो कहते मैंने सोचा अभी खाना बनाऊं, बाबा को भोग लगाना है, तो भोग लगाना है तो क्या करूं, कहते आलू काटने बैठा, अब आलू छीलने बैठा तो आलू का छिलका के बजाय आलू पूरा बाहर निकलता है वो छिलका, क्योंकि कभी जिंदगी में किया ही नहीं था कि आलू छीलते कैसे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसको जब छोड़ के मैंने सोचा चलो आटा बनाता हूँ, आटा बनाया तो वो सारा घोल बन गया, तो अंदर में समझो जैसे कभी कोई मनुष्य होता है कोई काम करता है और करते करते वो होता ही नहीं, थोड़ा सा इस प्रकार का आता है ना, ये होता तो है नहीं, छोड़ के बैठ गया, इतने जाके मैं एक किनारे पे बैठ गया, कोने में जाके कुर्सी पे बैठकर बाबा के साथ झगड़ा करना शुरू किया मैंने, आप कहते हो बनाओ मेरे सारे संबंध है, बनो अभी सजनी और बनाओ खाना। कहते मैं ऐसे ऐसे बाबा से बातें कर रहा था क्योंकि कभी कुछ किया ही तो था नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे ही विचार आया, मैंने सोचा कि चलो फिर से ट्राई करके देखता हूँ, तो कहते मैं गया तो मतलब मैंने आलू छीलने की कोशिश की, वो ऐसे छील गए जैसे मुझे अच्छे से आते हो, आटा भी मैंने बनाया अच्छे से आटा बनाया, और मैंने रोटी भी जब रोल किया, रोटी जब बनाने लगे तो रोटी भी ऐसे नहीं कि भारत का नक्शा बना, एकदम गोल रोटी बनी। तो वो कभी कभी क्या ना ऐसा कहा करते थे कि आप लोग कहते हैं, वो टीचर्स बहनों को कहा करते थे कि आप लोग कहते हैं कि शिव बाबा जो है वो तो कभी सजनी नहीं है, लेकिन मेरी तो वो सजनी है। वो कभी कभी हंसी में ये बात कहा करते थे, ये तो मैंने आपको हंसी ये बात सुनाई। तो बाबा तो क्या है, वो तो हमारा साजन है ना। अच्छा, और कौन सा संबंध है, फ्रेंड का। अच्छा, बहुत फ्रेंड का संबंध है। अच्छा, और कौन सा संबंध है, और भी कोई बाकी रह गया, माताएं पीछे भाई पीछे, ये सब आगे वाले ही बोलते हैं, पीछे वाले तो बोलते ही नहीं है। हाँ, बच्चे का संबंध, बच्चे का भी संबंध है। अच्छा, और भी कोई संबंध रह गया, भाई का संबंध। अच्छा, और भी कोई रह गया, टीचर तो हो गया, बड़े से बड़ा वो सर्जन है, वो रूहानी सर्जन है। अच्छा, और भी कोई है, हाँ जी, क्या कहा, क्या कह रहे हैं, नहीं स्नेही तो वो है ही है, सखा तो हो गया, दोस्त और सखा एक ही बात है ना। तो बाबा के साथ हमारे बहुत सारे संबंध हैं, हमको ये 6-7 जो संबंध है वो तो मुख्य रूप से याद रहते ही रहते हैं, लेकिन कभी आप देखिए वो हमें गाइड बनकर मार्गदर्शन हमारा करता है, ठीक है, और कभी वो क्या करता है, वो कोई मुसीबतों में से हमें निकालकर वो हमारी जीवन रूपी नाव को आगे ले जाता है, तो वो खिवैया बन जाता है ना। और क्या करता है, कभी हमारे अंदर से कोई ऐसी बुराई रूपी जो कांटा है वो निकल नहीं रहा होता, तो बाबा ऐसी मदद करता है, वो कांटा निकाल देता है और वो हमारा क्या बन जाता है, बागवान, है ना। तो और कभी क्या करता है, आत्मा के अंदर से अशुद्धता निकालकर हमको इतना पवित्र बना देता है कि वो सुनार का काम करता है, बाबा कहते मैं तुम्हारा धोबी भी हूँ, मैं तुम्हारा सुनार भी हूँ, कहते ना बाबा। बहुत से संबंध है, जैसे आपने कहा अविनाशी सर्जन भी है, सर्जन बन के हमारी बीमारी को वो दूर भी करता है, ये सब संबंध है हमारे बाबा के साथ। लेकिन इन संबंधों को निभाएं कैसे, सवाल तो ये है ना, कैसे करेंगे संबंध, कैसे निभाएंगे, कैसे निभाएंगे। अब मान लो आपकी अभी काकी है, चाची है, मामी है, हाँ सब इतने सारे ना, कोई मदर है, कोई डॉटर है, कोई सन है, आप बार बार उसका नाम तो नहीं लेते रहते, क्या करते, कैसे याद करते उनको, कैसे याद करेंगे, वो संबंध की अनुभूति कैसे हो, मुझे कैसे अनुभूति होगी। अपने आप याद रहते हैं, नहीं वो संबंध की मुझे अनुभूति कैसे, वो मेरा पिता है, वो मेरा शिक्षक है, वो मेरा सद्गुरु है, वो मेरी अनुभूति कैसे होगी, उसका तरीका क्या अनुभव करने का। एक सेकंड, क्या बोला आपने, उससे जो प्राप्ति होती है वो ठीक है, चलो मुझे वो नॉलेज है कि उससे जो मुझे प्राप्ति होती, लेकिन मैं उसका अनुभव कैसे करूं। वो मेरी माँ है, मेरी माता है, आपने कहा वो मेरी माता है, मैं उसका अनुभव कैसे करूं, वो मेरी माता है। हाँ जी, अच्छा और कुछ। देखो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो हमारी बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए कि हर संबंध का अनुभव क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे माँ है, माँ का रोल क्या होता है, जन्म देना है ना, माँ का रोल क्या होता है, पालना करना, और क्या होता है, और क्या होता है माँ का रोल, और क्या होता है, हाँ अच्छे संस्कार देना। अब जब एक बच्चा बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद जब उसे लगता है कि कोई गड़बड़ हो रही है, वो फट से आके माँ की गोद में छिप जाता है, क्यों, उसको लगता है माँ की गोद जो है मेरी सेफ्टी का साधन है ना। अब शिव बाबा जो है वो माता के रूप में उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे जन्म दिया, कैसे जन्म दिया, ब्रह्मा के द्वारा, ये मेरा एडॉप्शन है, ये मेरा नया जन्म है, और अब मेरी पालना कैसे कर रहा है, रोज मेरी पालना करता है, रोज कैसे पालना होती है, देखिए लौकिक माता पिता तो शायद थोड़ा समय पालना करेंगे, उसके बाद जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं उनको फिर क्या करते हैं, अभी आप अपने पांव पे खड़े हो जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमारा बाबा हमारी रोज पालना करता है, कैसे करता है आपको मालूम है, सस्टेनेंस का रूप बाबा का क्या है, बहुत इजी रूप सस्टेनेंस का, वो है रोज बाबा की सवेरे की क्लास की मुरली। ये बात मैंने कईयों के साथ शेयर की है, जो मैं आज आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूं। वो समय चला गया जब हम दादियों के क्लोज जाके दादियों से पालना लेते थे, दृष्टि लेते थे, बड़ों की हम समीप आते थे, अभी वो समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अभी जो समय है ना, बाबा की मुरली से पालना का अनुभव करने का, और वो बाबा खुद कराता है सुबह की क्लास में। आप सोचेंगे मैंने अपने मोबाइल पर मुरली पढ़ ली, ये जो भी टेक्नोलॉजी के साधन है, चाहे पीएम चैनल है, चाहे कुछ है, उससे मैंने सुन ली, उससे आपको वो बाबा की माँ के रूप में रूहानी पालना का, स्नेह की पालना का अनुभव नहीं हो सकता। वो केवल उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं आ सकते, या रिवाइज करने के लिए है। अदरवाइज बाबा की मुरली बाबा की पालना है। अभी समय अनुसार, जैसे समय अनुसार चीजें परिवर्तित होती है ना, तो ऐसे ये परिवर्तन आया है। तो और दूसरी बात कि जब भी कभी ऐसा लगे कि हम अनप्रोटेक्टेड अपने को फील करते हैं, अनसेफ अपने को फील करते हैं, बाबा माँ की गोदी में जाके बैठ जाओ, यू विल फील प्रोटेक्टेड। ऐसे ही आप देखिए पिता का संबंध, अब माँ के संबंध में कौन सा भाव है, वात्सल्य भाव, ममता का भाव। अब दूसरा जो है पिता का संबंध, अब पिता क्या देता है, उनसे मुझे वर्षा मिलता है, ठीक है, स्वर्ग का वर्षा तो मिलेगा तो मिलेगा, वो तो है ही पक्का, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, किसी को शक है क्या। कईयों को ऐसा होता है, कई बार कई लोग सवाल पूछते हैं, अब वो स्वर्ग किसने देखा, पता नहीं क्या बनेंगे जाके, किसी को मन में ऐसा तो नहीं है ना, किसी को है मन में ऐसा नहीं है ना, तो स्वर्ग का वर्षा तो निश्चित है, लेकिन अभी जो वर्षा मिल रहा है ना वो कौन सा, गुणों का, शक्तियों का। तो इसके अंदर कौन सा मेरे मन में भाव जागृत होता है, अधिकार पने का, अधिकारी पने का भाव। आप एक एक संबंध को समझने की कोशिश करो और फिर कैसे करते हैं उनकी अनुभूति, उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट कौन सा संबंध है जो बहुत गहन संबंध है, फिर आता है शिक्षक का। शिक्षा के रूप में बाबा ने क्या किया, मेरी बुद्धि को विशाल बना दिया, मेरे बुद्धि के कपाट खुल गए, और न केवल मेरे बुद्धि के कपाट खुले, लेकिन बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया कि तुम्हें क्या बनना है। लक्ष्य मिला, क्या लक्ष्य है हमारा, उससे पहले कौन सा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण बनना, वो भविष्य का, अभी कौन सा लक्ष्य है, फरिश्ता बनना। ब्राह्मण तो हम बन ही गए, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, अभी ये लक्ष्य है, तो मुझे लक्ष्य मिला, पढ़ाई मुझे मिल रही है, कैसी पढ़ाई सोचो आप, मैं इसका डिटेल आपको कुछ नहीं बता रही हूं, ये नई पढ़ाई, ये नया ज्ञान, ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, ये ऐसा ज्ञान है, ये आप सोचना इस पर, जो मुझे शिव बाबा से शिक्षक के रूप में अभी मिल रहा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये। अच्छा फिर नेक्स्ट चलते हैं सद्गुरु का संबंध, सद्गुरु से मुझे क्या मिलता है, हाँ सद्गुरु से मुझे गति सद्गति मिलती है, सद्गुरु क्या करता है, प्यूरिफिकेशन, सद्गुरु से वरदान भी मिलते हैं और सद्गुरु से हम पावन भी बनते हैं, ठीक है, वो हमें पावन बनने का, पावन बना रहे हैं ना सद्गुरु, और हम मुझे गति सद्गति में भी ले जा रहा है, ठीक है। अब उसके प्रति मुझे कौन सा भाव उत्पन्न होगा, कौन सा भाव होगा, कौन सा गुरु के प्रति कौन सा भाव होता है, श्रद्धा भाव, और शिक्षक के प्रति सम्मान भाव, रिस्पेक्ट का भाव, श्रद्धा रिस्पेक्ट से भी थोड़ी ऊंची है, उसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब इंग्लिश में कोई भी उसका शब्द है ही नहीं, एक है सम्मान भाव और एक है श्रद्धा भाव, श्रद्धा भाव बहुत ऊंचा है। अच्छा उसके बाद आगे कौन सा संबंध मेरा बाबा के साथ है, दोस्त का, सबसे अच्छा जो संबंध और सबसे इजी संबंध। आज भी आज हमारा वहां सेशन था, आपको मालूम है आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो आज मैं वहां भी ये बात सुना रही थी कि जो आज जो आपको फ्रेंड मिलेगा ना, आज आप क्या करो, वो लोग दुनिया में क्या करते हैं मालूम है आपको, कॉलेजेस आदि में क्या होता है, बैंड पहनाते हैं, फ्रेंडशिप बैंड होता है, तो आज शिव बाबा को बैंड पहना दो, उसको अपना दोस्त बना लो, अगर नहीं बनाया है तो, बनाया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनाया है तो बनाओ, और ये बेस्ट रिलेशन है बाबा के साथ। क्यों मैं इसको बेस्ट रिलेशन कहती हूं, आज के जमाने में बुजुर्ग हो, बच्चा हो, छोटा हो, कोई भी हो, प्रोफेशनल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, घर में रहने वाली माता हो, कोई भी हो, लेकिन हरेक के लिए ये संबंध जो है बहुत इजी संबंध है। कारण उसका ये है, उसका कारण ये, क्योंकि इस संबंध में हम अपने दिल को शिव बाबा के सामने खोलकर रख देते हैं, दोस्त के सामने खोल देते हैं ना। तो अगर ये आदत नहीं है तो इस आदत को बनाओ। वो मेरा सच्चा दोस्त है। कैसा दोस्त है वो? इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम में आए। और वो शिव बाबा मेरा कैसा दोस्त है? वो मुझे हर मुश्किल में काम आने वाला दोस्त है। लेकिन वो कब काम में आएगा? वो कब आपको हेल्प करेगा? मित्र बनाया हो तो ना बराबर। लेकिन मित्र बनाया तो है, लेकिन मित्रता निभाई है? मित्रता के संबंध में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? मैत्री भाव। और वो कौन सी मैत्री? सच्ची दोस्ती है ना। सच्ची दोस्ती होनी चाहिए ना उसके साथ। तो इसका मतलब क्या होगा? मैंने आपको क्या कहा? ओपन माई हार्ट, यानी हम अपने दिल को खोल के रख देते हैं। यानी मेरा सच्चाई और सफाई का संबंध है, कहीं उसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। ऐसा संबंध है शिव बाबा के साथ मेरा दोस्त का। वो मेरा दोस्त भी है और दोस्त बनकर वो हमेशा अपनी दोस्ती निभाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है उसके बाद? साजन का। और साजन के संबंध में क्या होता है? हाँ, कौन सा भाव उत्पन्न होता है? समर्पण भाव। हमेशा कौन सा भाव उत्पन्न होगा? समर्पण भाव। और वैसे भी क्या होता है कि जो सजनी होती है वो साजन के सामने कैसे जाएगी? सजनी कैसे जाएगी? श्रृंगार करके। हमारा श्रृंगार कौन सा है? देवी गुणों का श्रृंगार। बिना श्रृंगार के जाएगी क्या सजनी? शोभेगी नहीं। और फिर कौन सा संबंध है? बच्चे का। ठीक है, अब बच्चे के संबंध में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? प्रेम का। बच्चे के सारे संबंध प्रेम पर आधारित हैं। वो माता के रूप में, बच्चे के रूप में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? माता पिता बच्चे के लिए क्या करने को तैयार होते हैं? सब कुछ त्याग कर देने को तैयार होते हैं। तो कौन सा भाव होगा उत्पन्न? त्याग भाव। तो सब संबंध जरूरी है, सब संबंध जरूरी है। अब मुझे अनुभव कैसे होंगे? अब मुझे हर संबंध में बाबा के साथ बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन। इसीलिए किसी ने क्या कहा है, योग क्या है? किसी ने कहा है योग क्या है? इट इज कम्युनिकेशन, इट इज कॉन्वर्सेशन, बात करना। अब आप में से सारे, इतने सारे यहां बैठे, कोई ऐसा सभा में है जो कहता है कि मुझे बात करना नहीं आता, वो हाथ खड़ा करो। कोई है जो कहता है मुझे बात करना नहीं आता? है? अच्छा, अब बात करना आता है ना। अब यहां बात किसके साथ करनी है? तो फिर योग मुश्किल कहां से हुआ? बात ही तो करनी है उसके साथ। लेकिन हमको क्योंकि आदत नहीं है बात करने की, हम उसको अपने साथ रखते नहीं हैं, इसलिए हमको अनुभव वो होता नहीं है। और इसीलिए बीच बीच में हमको डिफिकल्टीज अनुभव होती हैं। तो हमें क्या करना है? बाबा से हर संबंध का समय प्रति समय अनुभव करना है। कभी आप क्या करो, आप जो है एक संबंध लिख के लिखना शुरू करो बाबा से। बाबा आप मेरे पिता हो। कैसे पिता हो? अब लिखो आप। आपने मुझे सब कुछ दे दिया, सारे सुख मुझे दे दिए। और क्या किया पिता बनकर? बाबा ने क्या किया? मुझे वर्षे का अधिकारी बना दिया, सारे गुण सारी शक्तियां मुझे दे दी। आपने मुझे मास्टर प्यार का सागर बना दिया, आपने मुझे मास्टर शांति का सागर बना दिया। अब मैं कैसे बात कर रही हूँ? देखिए, अब जैसे मैं अब आपको कहूंगी तो कैसे कहूंगी? बाबा, बाबा ने मुझे ये दिया, बाबा ने मुझे ये दिया, बाबा ने मुझे ये दिया। मैं इस रूप से कहूंगी। लेकिन जब मैं हम एक दो में आपस में बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे? सब्जेक्टिव रूप में। बाबा आपसे मुझे ये मिला, आपसे मुझे ये मिला, आपसे मुझे ये मिला।
तो जब तक ये कम्युनिकेशन का कनेक्शन नहीं जुटेगा ना, ये कम्युनिकेशन जब तक ये रिलेशन बाबा के साथ नहीं जुड़ेगा ना, तब तक मेरी बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं हो सकती। और अगर आप लिखने बैठेंगे, मेरा अनुभव ये कहता है कि जब आप लिखने बैठेंगे एक एक संबंध पे, आप दो दो तीन तीन पन्ने लिख सकते हैं कि कैसे मुझे बाबा के साथ बातचीत करनी है। कभी कभी देखिए बाबा की साकार मुरली में आता है, बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे अमृत वेले उठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। अब मीठी मीठी बातें कैसे करेंगे बाबा से, वाह बाबा अच्छा आप तो कितने मीठे हो, आपने हमको क्या से क्या बना दिया, हम तो कहाँ पड़े थे, हमको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, हम तो बिल्कुल अनजान थे, आपने हमें क्या बना दिया, नॉलेजफुल बना दिया, आपने हमें ज्ञानवान बना दिया। बाबा हम तो बिल्कुल पुरानी दुनिया में थे और आपने हमें पुरानी दुनिया से छुड़ाकर हमें आप संगम युग पर ले आए, आप हमें पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जा रहे हो। ऐसी बहुत सी बातें बाबा की मुरली में आती है, आप तो हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हो, है ना बाबा की मुरली में। अब ये बाबा हमको मुरली में सिखाते हैं। तो जब जितना मेरे पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना होगा और जितना मुझे बाबा से बात करना आएगा, उतना आपको संबंध की अनुभूति होगी। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि क्या होता है जो हमारे व्यर्थ संकल्प होते हैं ना, उनकी गति तो बहुत तेज होती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, हमारा जो मन है ना, ये हमेशा अपने आप से बात करता रहता है, हमेशा। इवन अभी भी आप देखो यहाँ बैठे हैं ना आप, तो फिर भी आप में से कई बहुत पुराने होंगे, मन और बुद्धि आपका सुनने में एकाग्र होगा, और लेकिन कईयों ने फिर भी आप देखेंगे सब कॉन्शियस लेवल पर, समझो जो बात आपको अच्छी लग रही है ना, तो अंदर में क्या हो रहा है, मन ऐसे ऐसे कर रहा है, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर में आप देखिए मन क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक। शब्दों में नहीं बोल रहे, ये शब्द मैं बोल रही हूं, लेकिन मन अंदर से इसको स्वीकार करते हुए बोल रहा है ये। और ये जो मेंटल रिकॉर्डिंग है ना, ये चलती रहती है, जिसको सेल्फ टॉकिंग कहते हैं। और अगर हम बाबा से बात करें बीच बीच में, अब जब कैसे बात करें, हमें याद है एक बार हमने एक वर्कशॉप रखी थी अपनी क्लास में, और उसमें संबंधों की बात चल रही थी। तो एक माता है, अभी भी है वो माता, उन दिनों वो टीचिंग प्रोफेशन में थी, अभी तो वो रिटायर हो गई हैं। तो उनके दो बच्चे हैं और दोनों ही मेल्स हैं, तो घर में तीन मेल मेंबर, एक अकेली फीमेल मेंबर। और वो टीचिंग में थी, उसको स्कूल में पढ़ाने भी जाना है, तो बहुत सारा काम करना होता है। तो आपको मालूम है ना, कहीं कभी ऐसा होता है, कहीं तो मेल मेंबर्स हेल्प करने वाले होते हैं, कहीं पर क्या होता है कुछ भी करने वाले नहीं होते हैं। तो वो अपना अनुभव सुना रही थी, मैं क्या करती हूँ कि मैं सवेरे जब उठती हूँ अमृत वेले योग के बाद, मुझे खाना वगैरह सब बनाना होता है, तो मैं जब खाना बनाने जाती हूँ, मैं बाबा को कहती हूँ आओ बाबा चलो आलू काटो, चलो बाबा आओ ये करो। भाई मीन्स मैं ना अपने मन मन में बाबा को बुलाती रहती हूँ, और मेरा काम कैसे हो जाता है वो मुझे ही पता नहीं लगता, और कैसे मैं समय पर स्कूल में पहुंच जाती हूँ। अब बाबा को क्या आलू काटने के लिए बुलाएंगे क्या, मीन्स कोई सुनेगा तो कहेंगे भगवान को क्या इस काम के लिए बुलाएंगे क्या। लेकिन ये है हमारा अंदर का स्नेह, हमारी अंदर की भावना, ये जो संबंध है ना, एक उसका आधार है कम्युनिकेशन और दूसरा उसका आधार है हमारी भावना। उस भावना में क्या हुआ, शास्त्रों में क्या मिसाल दिया है, भीलनी के झूठे बेर खाए राम जी। राम जी ने भीलनी की क्या देखी, झूठे बेर नहीं देखे, लेकिन क्या देखा था, वो उसकी भावना देखी थी। भावना के आगे विवेक कुछ नहीं करता। जिसको बाबा ने मूल्यों में क्या कहा है कि बच्चे दिमाग से काम करते हैं लेकिन दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं है।
आप देखो, हम जो राजयोग की बात करते हैं, राजयोग केवल ज्ञान पर आधारित नहीं है। राजयोग का अनुभव, जितना उसके अंदर ज्ञान है उतनी उसके अंदर प्रेम और श्रद्धा है। जब तक हमारे मन में प्रेम और श्रद्धा की भावना जागृत नहीं होगी, याद रखिए, हम बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं कर सकते। मीरा का भी प्रेम था। कैसा प्रेम था? मीरा ने कृष्ण को किस रूप में देखा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। उसने उसको साजन के रूप में देखा। अर्जुन का भी प्रेम था कृष्ण के साथ, लेकिन वो कौन सा उसका रूप था संबंध का? वो उसका सखा का रूप था। यशोदा का भी कृष्ण से प्रेम था, लेकिन उसने किस रूप में उसको देखा? उसने उसको बच्चे के रूप में देखा। तो ऐसे ही बाबा कौन है? बाबा तो बहुरूपी है। वो उस बहुरूपी को कौन सा रूप देकर मुझे अनुभव मुझे करना है, वो मेरी चॉइस है। बाबा सब कुछ बन जाएगा हमारे लिए, सब कुछ करेगा, लेकिन मुझे उस श्रद्धा से ये उसको अनुभव करना, ये विशेष श्रद्धा का विषय है, ये भावना का विषय है, ये लॉजिक का विषय नहीं है, ये रीजनिंग का विषय नहीं है। ज्ञान मेरी बुद्धि में है, उस ज्ञान के आधार पर मैं बाबा से बातचीत करती हूँ, लेकिन उस बातचीत के साथ साथ मेरे मन में वो भाव है। आप देखिए, जब बाबा की वो साकार मुरली पढ़ते हैं, जब बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कभी अपना अनुभव सुनाते हैं मुरली में, साकार मुरली में, कि मैं बाबा को याद करता हूँ, एक लोटा पानी डालता हूँ बाबा को याद करता हूँ, बाबा मुझे कर रहे, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं बाबा को कहता हूँ। आता है बाबा की मुरली में ये बात? मीन्स क्या है? बाबा बार बार बाबा के साथ है। ये साकार बाबा ने अनुभव सुनाया कि साकार बाबा शिव बाबा के साथ है, वो उसको अनुभव करे, वो फिर खिसकता है बुद्धि से, फिर उसको लेकर आता है। इसका मतलब क्या है? ये मेरी श्रद्धा का विषय है। अब निराकार बाबा लोटा डालेगा क्या पानी का ऊपर हमारे? वो हमारे लिए खाना पकाएगा क्या? आप सोचो, स्थूल में तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, लेकिन जब उस भावना से हम करते हैं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, अगर बाबा की याद में तुम कितना भी चलो तो तुमको थकावट नहीं होगी। तो यदि हम पल पल हर कदम बाबा के साथ उन संबंधों को निभाते हुए, उन संबंधों को याद करते हुए हम उनको निभाते चले, और यदि हमको उनका अनुभव हो जाए, तो हमें कभी भी ये हम नहीं कहेंगे मुख से कि बाबा को याद करना कठिन है। और ये संबंधों की रचना अगर हो जाएगी, फिर जो बाकी अवस्थाएं हैं ना, वो अवस्थाएं अपने आप धीरे 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 हमारे अंदर जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। हम बीज रूप स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं, हम फरिश्ते स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा तरीका, ये विधि ऐसी है जिसमें हमारे अंदर इतना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा हो जाता है। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है, बुद्धि में वो ज्ञान का खजाना मुझे याद आता है, जिससे मैं, मान लीजिए मेरे पास कोई समस्या आई, ठीक है, अब मैंने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ रखा है, उस कनेक्शन से उस समस्या जैसी मेरे सामने है, उस रीति से मैं बाबा को सामने लेकर आती हूँ, मैं बाबा को याद करती हूँ, बाबा से बात करती हूँ कि बाबा अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बाबा आपको टच करेगा, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान आ गया, बाबा बाबा हम करते हैं, संबंध का ख्याल है, बाबा आपको टच करेगा। टच करने के बाद आप उस समस्या से अपने आप को पार कर सकेंगे और बाबा में आपकी बुद्धि एकाग्र हो सकेगी। नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे सामने कोई बात आती है, हम क्या करते हैं, बाबा कैसे करें, ये हो तो रहा ही नहीं है, आपने तो बता ही दिया है, ड्रामा तो है, ये तो पहले भी हुआ होगा, ये ड्रामा अनुसार हुआ, फिर कर्म की फिलॉसफी भी बुद्धि में लेकर आते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर वही घटना बुद्धि में आती, याद आती रहती है जो घटना घटी थी। ठीक बात है ये?
ऊपर से हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो पहले भी हुआ होगा, ठीक है इसको पार तो करना ही है, बाबा तो है ही और हमारा है कौन, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर मुझे वो बात जो है बार बार याद आती रहती है। वो बात मुझे याद नहीं आनी चाहिए, क्यों? बड़े से बड़ा कौन है, बड़े से बड़ा कौन है बाबा। लेकिन ये बात किस चीज की, ये तब होता है जितना ज्यादा हम अभ्यास करते हैं, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं। बिना अटेंशन दिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि माया भी कोई कम नहीं है, वो बड़ी जबरदस्त है। वो भी देखती है ना कि ये मेरा जो मुरीद था वो जा रहा है भगवान की तरफ, वो भी उसको पुल करने की कोशिश करती है, बुलाती है अपने पास। तो इसलिए क्या करेंगे, बाबा से सर्व संबंध निभाओ। किस आधार पर निभाएंगे, हाँ किस आधार पर निभाएंगे, कम्युनिकेशन है ना, और स्नेह अफेक्शन, इस आधार पर, वो श्रद्धा के आधार पर निभाओ उससे हर संबंध। और एक बात मैं आपको और कहूंगी, आप क्या करो, जब आपको समय मिलता है ना, मान लीजिए आज ये सप्ताह जो है ना, मैं बाबा से पिता का अनुभव करूंगी कि बाबा मेरा पिता कैसे है, या ये सप्ताह जो है मैं बाबा से माता का अनुभव करूंगा। आप क्या करो, पेपर पेन लेके लिखना शुरू करो, आपको इतनी सारी बातें याद में आएंगी, और जब फिर उसके बाद क्या करो, उनको पढ़ो, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना बुद्धि में वो याद आता जाएगा, और फिर उसका अभ्यास करो, एक एक संबंध का ऐसे अभ्यास करो तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं लास्ट में यूं कहूंगी कि रिश्ता बाबा से ऐसा निभाओ, जितना समय मिले उसकी याद और सेवा में बिताओ, ऐसा असर डालो दुनिया पर, ऐसा प्रभाव डालो दुनिया पर कि हर कोई कहे हमें भी अपने बाबा से मिलाओ, हमें भी अपने बाबा से मिलाओ। ओम शांति। अभी आप सभी योग करेंगे। दिल तो मेरा ये था कि मैं यहाँ से 7:30 बजे तक योग करके जाती, लेकिन वहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है हमारे विंग में, तो वहाँ पहुँचना है। और दूसरी बात, हमारे जो सेवाधारी भाई आए हुए हैं उनमें से 3 लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है आज, वो 2 उसमें से ICU में है, तो इसलिए मुझे अभी वहां जाना होगा। तो बहुत अच्छा लगा, और राधा बहन ने यहाँ आने का एक अवसर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। ओम शांति।
हम भी सब थैंक्स करते हैं इतने व्यस्त शेड्यूल में से, जैसे ही मैंने कहा तो तुरंत आपने हाँ किया, तो और अच्छा लगा क्लास में ना, बहुत अच्छा लगा ना, अच्छी नई बातें मिली ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
ओम शांति। अशांति।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की पाती है, भगवान हमारा साथी है। हाजिर है हजार भुजा, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं की, ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक